ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को संगम युग में एक सूत्र में बांधा है और इसीलिए एक सूत्र में बांधा है क्योंकि बाबा सारे विश्व के अंदर एक ऐसी श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना कराना चाहते हैं और उसमें हम बच्चों का सहयोग ये अनिवार्य है। लेकिन अगर जैसे एक माला के मोती बिखर जाए, जैसे वो गीत की लाइन याद आती है, टूट गई है माला मोती बिखर चले, और इसीलिए जो बाबा ने ये संगठन की माला बनाई थी, सत्युग में भी बहुत हार्मनी में हम सभी रहे और इसीलिए वो सुखदाई दुनिया थी, राम राज्य कहलाया। लेकिन जैसे ही द्वापर युग आया वो माला टूट गई, या यूं कहे कि माया ने उस माला को तोड़ दिया और इसीलिए वो मोती ऐसे बिखर करके दुनिया के चारों कोनों में चले गए, कोई कहां गए कोई कहां गए। अब बाबा पुनः उस माला को जोड़ रहा है और इसीलिए बाबा का एक एक बच्चा चुना हुआ रत्न है। एक एक की विशेषता के आधार पर बाबा ने चुन करके हमें एक सूत्र में वापस बांधा है। ये स्नेह का सूत्र या एक दूसरे के लिए सहयोगी बन करके एक दूसरे के समीप बाबा ने लाया है। नहीं तो आज दुनिया में देखे कि एक परिवार में भी वो संगठित होकर के चल नहीं सकते हैं। और यहां बाबा ने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा से इकट्ठे किए और फिर भी एक ही स्नेह के सूत्र में हम सभी को बांधा है। तो ये सबसे बड़ी कमाल संगम युग पर बाबा करते हैं। बहुत सुंदर मिसाल राता जी ने दिया कि अंगीठी के भी सारे कोयले इकट्ठे जलते हैं तो खाना भी पका देता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन अगर एक को अलग कर दिया जाए तो निस्तेज हो जाता है। ठीक इसी तरह बाबा ने भी हम बच्चों के अंदर जो रूहानियत की ताकत भरी है, जो पावर भरी है, लेकिन अगर इस संगठन से अलग हो जाए हम भी तो क्या हो जाएगा? निस्तेज हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए विश्व के परिवर्तन के लिए, विश्व को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस का सहयोग देने के लिए हम सभी को एकत्रित होना बहुत ही आवश्यक है। दुनिया में भी कहा जाता है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यूनिटी में है, संगठन में है, तो हम खड़े हो सकते हैं, परंतु जैसे ही मतभेद में आकर के हम डिवाइड हो गए, वहां से गिरना आरंभ हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है, ताकत है। जो असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं। जिस तरह एक फूल बहुत सुंदर है, आकर्षित करता है, परंतु उसी फूल को गुलदस्ते में डाला जाए तो गुलदस्ता और भी आकर्षण करता है, लेकिन अगर वो सारे फूलों के बगीचे में चले जाए तो बगीचा और भी आकर्षित करता है हर कोई को। ठीक इसी तरह बाबा भी कहते हैं ये अल्लाह का बगीचा है और इस अल्लाह के बगीचे के हम सभी चैतन्य फूल है। और इसीलिए आज शायद दुनिया को भी धीरे धीरे हर बाबा के ये रूहानी फूल, रूहानी गुलाब अपने रंग रूप सुगंध से आकर्षित करते जा रहे हैं। एक एक आत्मा इस दिव्य परिवार के अंदर हर एक को आकर्षित करके ले आ रहा है। साथ ही साथ जैसे कई बार कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक शिकारी ने जाली डाली, सारे पक्षियों को उसने कैद कर लिया, उसमें फंस गए सब। लेकिन वो सारे पक्षियों ने सोचा कि अब अगर हमें मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा। हर एक इतना जोर लगा करके उड़े तो उस नेट के साथ, उस जाली के साथ वो सब उड़ करके उससे मुक्त भी हो गए और उस शिकारी के जाल से भी निकल गए। लेकिन अगर एक एक खाली अपने पंख फड़फड़ाता रहेगा तो उससे वो कोई जाली से मुक्त हो सके ऐसा नहीं है। ठीक इसी तरह हम सभी बाबा के बच्चे भी संगठित रूप में कोई भी कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य असंभव है ही नहीं, हर कुछ हमारे लिए संभव हो जाता है। लेकिन बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे इस माया से भी सावधान रहना है, क्योंकि माया इस किले की ईंट को ही क्या करती है, कमजोर करने का प्रयत्न करती है। कौन सी माया है जो किले की ईंट को कमजोर करने का प्रयत्न करती है? कौन सी माया आती है? हाँ, पांच विकार रूपी माया और कौन सी माया आती है? कहीं न कहीं किसी में देह अभिमान की माया आ जाती है, तो किसी में क्रोध आ जाता है, तो उस क्रोध से या देह अभिमान से नेचुरल है वो जो एकता है, सुमधुरता है, उसको तोड़ने का ही कार्य करती है। वहां जो व्यवहार कुशलता है हमारी समाप्त हो जाती है। इसीलिए आज की मुरली में भी बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे तुम जब देखते हो दुनिया के अंदर कोई भी साधु महात्मा जब संगत मन सत्संग कराते हैं या कथा कराते हैं तो दुनिया के लोग भी यही देखते हैं कि ये फलाना महात्मा करा रहा है, तो उनकी दृष्टि वृत्ति के अंदर वो देह ही है और देह अभिमान में आने के कारण ही वो कच्चे हो जाते हैं। बाबा कहे तुम सभी पक्के ब्राह्मण हो क्योंकि तुम अभी देही अभिमानी बने हो। और उस देही अभिमानी स्थिति से ही हम अपने इस संगठन को भी पावरफुल बनाते हैं, इस परिवार को भी एग्जाम्पल बना सकते हैं सारे विश्व के अंदर कि देखो दुनिया में चार लोगों का परिवार होता है तो भी कहां से हां सारे के मुख अलग अलग दिशा में होंगे, और यहां इतने लाखों होने के बावजूद भी हम देही अभिमानी स्थिति के कारण एक दूसरे के समीप आते हैं, और यही समीपता में सरलता जितनी समाई होती है तो और ही हम व्यवहार कुशल बन जाते हैं, इजी नेचर जिसको कहा जाए। दुनिया में लोगों के इतने कॉम्प्लिकेटेड नेचर है जो उनको समझ पाना ही मुश्किल है, लेकिन बाबा के बच्चों के नेचर बहुत सरल सहज इजी नेचर है, और उस इजी नेचर के कारण ही हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है जिसमें बाबा ने कहा कि संगठन की शक्ति को पावरफुल बनाने का आधार तीन चीजें हैं, स्नेह, स्वच्छता और रूहानियत। रूहानी स्नेह है हमारा, ईश्वरीय स्नेह है। हम सभी अपने आप को जब अपने अनादि नेचर में देखते हैं, अनादि स्वरूप में देखते हैं, तो वो ईश्वरीय प्रेम हमारा जागृत होता है एक दूसरे के प्रति, वही भावनाएं हमारी स्नेहयुक्त होने कारण एक दूसरे के समीप है। दूसरा, जैसे दुनिया के अंदर अगर दूर होने का कारण है स्वच्छता नहीं, क्योंकि अंदर कुछ बाहर कुछ, जिसको दुनिया में भी लोग कहते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी। कभी कभी ऊपर से बहुत सुंदर बात करेंगे लेकिन बाद में जब उनकी भावना पता चलती है तो लगता है अंदर कुछ है बाहर कुछ है, स्वच्छता नहीं है। लेकिन बाबा के बच्चों के अंदर वो ट्रांसपेरेंसी है, जो अंदर है वही बाहर है। और इसीलिए जब ऐसी हमारी स्वच्छता है भावनाओं के अंदर तो हम एक दूसरे के समीप सहजता से आ सकते हैं। और तीसरा, रूहानियत, आध्यात्मिकता के आधार से वो रूहानियत हमारी विकसित होती है। आज दुनिया के अंदर वो रूहानियत नहीं आ सकती है, दे अभिमान के कारण टकराते हैं। वो रूहानियत विकसित ही नहीं हो पाती है क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, न मालूम है कि आध्यात्मिक शक्ति क्या चीज होती है। इसीलिए बाबा कहे कि तुम बच्चे जब स्नेह के आधार से एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं तो सिर्फ एक दूसरे के सहयोगी नहीं बनते लेकिन हमारे वाइब्रेशन से सारे विश्व को भी हम सहयोग देने का कार्य करते हैं। कौन सा सहयोग देते हैं, कौन सा सहयोग देते हैं? अपने रूहानी वाइब्रेशंस के सहयोग देते हैं, क्योंकि आज अगर दुनिया के अंदर देखा जाए तो मनुष्य जीवन में अगर अभाव है तो यही रूहानियत का अभाव है। वो एक दूसरे के प्रति भी रूहानी वाइब्रेशन से सहयोगी नहीं बन सकते। इसलिए वो कहानी याद आती है कि सहयोग जो है देवताई लक्षण है, और सहयोग न देना न लेना ये आसुरी लक्षण है। कैसे? वो कहानी आप सबको मालूम होंगी, जो कहा जाता है कि एक बार इंद्र ने दावत रखी और इंद्र के दावत में उसने देवताओं को भी निमंत्रित किया और असुरों को भी निमंत्रित किया, लेकिन कंडीशन रखी थी। भोजन 56 प्रकार के थे लेकिन हाथ बांधे हुए होंगे और खाना है। असुरों ने सोचा, देखो यही इंद्र की चाल है हमें नीचा दिखाने के लिए। लेकिन असुरों का आपस में भी वो स्नेह न होने के कारण, सहयोग की भावना न होने कारण क्या किया, भोजन उछाल उछाल करके मुंह में लेने का प्रयत्न किया, कुछ आया कुछ नहीं आया और सारा जो स्थान था उसको भी अस्वच्छ कर दिया। और फिर एकदम बिगड़ करके जाने लगे। सोचा कि इंद्र की ये चाल थी, देखे तो सही देवताओं ने, देवताओं के लिए भी ये नियम था या नहीं था। बाजू के हॉल में देखने गए कि देवताओं के वो इतना शांति से प्रेम से भोजन कर रहे थे, क्योंकि देवताओं का ये लक्षण ही है सहयोग देना और लेना। तो हाथ उनके भी बांधे हुए थे लेकिन वो एक दूसरे के सामने बिठा कर इतना प्यार से एक दूसरे को खिलाने लगे, तो भरपेट भोजन भी किया, रूहानी प्रेम का शांति का वातावरण भी बना रहा और स्थान को भी स्वच्छ रखा। और असुरों में क्योंकि आपस में स्नेह नयन होने के कारण न सहयोग दे सके, आवाज करने लगे, स्थान को भी अस्वच्छ कर दिया, न भरपेट भोजन कर सके। आज दुनिया के अंदर क्या हो रहा है? हर कोई ये देखता है कि नहीं, इसको सहयोग नहीं देना है, इतना अहंकार में है कि एक दूसरे के सहयोगी बनना नहीं चाहते हैं, स्नेही बनना नहीं चाहते हैं। और बाबा ने चुन चुन करके कहां कहां से एक एक मोती को इकट्ठा करके इतना प्यार उसमें भर दिया, जो एक दूसरे के सहजता से सहयोगी बन करके विश्व के अंदर भी वही वाइब्रेशंस को फैलाने के निमित्त बन गए। और उसी वाइब्रेशंस के आधार पर हम सारे विश्व के वातावरण को भी परिवर्तन करने के लिए निमित्त बन जाते हैं। तो बाबा हम बच्चों के द्वारा जो कार्य करा रहा है, क्योंकि बाबा की हमारे प्रति दृष्टि क्या है, सोचो। बाबा जानता है कि हर एक बच्चे के अंदर कितने अवगुण भरे हुए हैं, कितनी कमी कमजोरियां है, लेकिन फिर भी बाबा जब मुरली चलाता है, अब एक तो मुरलियां हम सभी ने सुनी है, तो बाबा एक एक रतन की कितनी महिमा करता है, कितना गायन उनका करता है, वाह बच्चे वाह, कितनी वाह वाह के गीत गा करके हर बच्चों के अंदर भी उमंग उत्साह भर देता है। कई बार कई आत्माओं को देख करके ये लगता है कि बाबा ने इसके अंदर क्या ऐसी विशेषता देखी होगी जो इसको चुना, लेकिन शायद हमें विशेषता नहीं दिखाई देती है, लेकिन भगवान ने ऐसी आत्माओं के अंदर भी विशेषता देख करके उसको उठाया, उसको अपना बनाया और उस आत्मा के लिए भी एक प्लानिंग है बाबा के पास कि उसके द्वारा क्या सेवा करानी है, क्योंकि तभी तो बाबा उनको भी उस सेवा के फल स्वरूप भाग्य प्रदान करेंगे। तो भले देखने में यह आता है कि इस आत्मा में कोई ऐसा गुण नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा ने जरूर कुछ न कुछ देखा है उस आत्मा के अंदर ही, और उसके लिए बाबा के पास पूरा प्लानिंग है, और बाबा उस तरीके से सेवा उस आत्मा से भी कराते हैं, क्योंकि तभी बाबा उसको उस सेवा के फल स्वरूप वो भाग्य प्रदान करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा चांस हर आत्मा को देता है, चांस लेना हमें आना चाहिए। अगर हमने चांस नहीं लिया तो बाबा का तो उसमें कोई दोष है ही नहीं, क्योंकि बाबा ने तो हर आत्मा के लिए चांस रखा था, दिया था। उस आत्मा ने अगर नहीं लिया और अपना भाग्य नहीं बनाया तो अंत समय उसके सामने वो दृश्य जरूर आएगा कि तुम्हें मैंने ये चांस दिया था, श्रेष्ठ भाग्य बना, और तुम्हारे अंदर ये विशेषता थी जिसके आधार से तुम इतना ऊंच बन सकते थे। तभी बाबा जब मुरली चलाते हैं तो आरंभ में तो रियलाइजेशन की बातें होती है, ऐसा समझते हो एक रियलाइजेशन देता है बाबा, और उस रियलाइजेशन के आधार से अगर हमने वो चीजें अपने अंदर जो समाई हुई थी उसको जागृत कर दिया तो हम उस कार्य के लिए ऐसे निमित्त बन जाते। खाली हम निमित्त बनते इतना नहीं, लेकिन अपने साथ कईयों को उस कार्य में निमित्त बना देते हैं। और इसीलिए कहा कि अल्लाह का जो बगीचा है उस बगीचे के अंदर ये वैरायटी फूल होने के बावजूद, इस वैरायटी खुशबूदार एक एक अलग अलग प्रकार के फूल होने के साथ साथ इनकी खुशबू से बाबा सारे विश्व के अंदर प्रकृति को भी परिवर्तन करते, पशु पक्षियों के अंदर भी वो तालमेल भर देते हैं, और साथ ही साथ ऐसे संस्कारों की रास हमारी करा देते हैं जिसमें एक भी ईंट कमजोर नहीं पड़ सकती है। बाबा कई बार ये मिसाल देते हैं किला, ये किला इतना मजबूत होना चाहिए, किले की एक ईंट भी कमजोर नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई ईंट कमजोर होती है तो उसके आजू बाजू वाली जो ईंट है, ऊपर नीचे वाली ईंट जो है, उसको क्या करना है, उस आत्मा को बल देना है, शक्ति देनी है, उसको भी अपना समझ करके जब उसको देना आरंभ कर देते हैं तो वो मजबूत हो जाती है बाबा। लेकिन अगर वो चारों ईंटों ने मुख मोड़ लिया, उसको सहयोग नहीं दिया किसी प्रकार से, तो क्या होगा, वहां से वो ईंट जब टूट करके नीचे गिरती है तो कई बार सारा किला ही उस ईंट के कारण कमजोर पड़ जाता है और नीचे आने लगता है। इसीलिए बाबा ने भी एक ऐसी रूहानी सेल्वेशन आर्मी के हमें बनाया है ताकि इस किले के अंदर हम सब माया से सुरक्षित रहते हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ से सारे विश्व को सहयोग स्नेह दे करके, वो स्नेह का पानी, ये स्नेह की शक्ति दे करके उनको भी पावन बनाते हुए उनको क्या करना है, नई दुनिया के लायक बना देना है। आज सवेरे की मुरली में बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही कि बहने हैं नदियां और भाई है सरोवर। क्यों ऐसे कहा, बहने नदियां, नदियां माना बहाव और सरोवर माना ठहराव। वास्तव में बहाव जब बहता है तो कई गंदगी को साथ ले जाता है। एक कविता में पढ़ मेरे को सुनने को मिली कि जब बहाव है, एक नदी और कुएं के बीच में डायलॉग चल रहा था, तो नदी ने कहा कि तू तो एक जगह का ठहरा हुआ पानी हो गया है, मैं देखो बहता। तो कहा तुम बह करके ऊपर से नीचे की ओर आता है और कुएं का पानी नीचे से ऊपर की ओर आता है। डायलॉग देखो, और सचमुच है कि कुएं का पानी नीचे से ऊपर की ओर आता है और नदी ऊपर से नीचे की ओर जाती है। बहाव में तुम नीचे जाता है और मैं नीचे से ऊपर आता हूं, तो ठहराव अच्छा, बहाव अच्छा। हाँ, दूसरा डायलॉग ये कहा कि मैं जिंदगी भर पीने के लिए काम आता हूँ, इतना मीठा रहता हूँ, लेकिन हे नदी तू बहते बहते सारी गंदगी को भी अपने अंदर इकट्ठी कर लेती है, तो कभी कभी तुम्हारा पानी पीने काम नहीं आता है। वो डुबकी लगाने काम जरूर आ जाता है लेकिन पीने के योग्य नहीं रहता है। लेकिन सतयुग के अंदर जो नदियां बहेगी वो सब निर्मल जल होगा, है ना? भले ऊपर से बहती जाएंगी तो भी निर्मल जल होगा। तो इसीलिए कहां कहां बहाव भी ठीक है, कहां कहां ठहराव भी ठीक है, बढ़िया है। बहुत सुंदर कविता, जो डायलॉग था मैं कुछ बातें तो भूल गई, लेकिन एक एक जो डायलॉग में बातें कही गई थी बहुत सुंदर थी। तो आज बाबा की मुरली सुनते हुए महसूस हुआ कि बाबा ने क्यों दोनों को चुना है, बहाव को भी चुना है और ठहराव को भी चुना है। ज्ञान मान सरोवर में ही तो डुबकी लगाकर परियां बन जाते हैं, और नदी गंगा का पानी कहो या कोई भी नदियां है, उसको पतित पावनी का टाइटल, भगवान का टाइटल दे दिया, तो दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों ही श्रेष्ठ है, कोई भी कम नहीं है, ठीक है ना? तो इसीलिए दोनों को मिलकर के ही इस संसार को भी क्या करना है, सुंदर स्वर्ग जरूर बना देना है। अच्छा, ओम शांति।
हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। करते होंगे दो ताज, होगा जग में देवी रात, हर करते होंगे दो ताज, हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे,
हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे,
हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे।